समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह आ चुकी है और कहते हैं कि हर सुबह हमारे लिए एक मौका लेकर आती है और हर एक शाम हमें एक तजुर्बा लेकर जाती है। आप जुड़ चुके हैं मेरे यानी दिव्या तोमर के साथ अपने पसंदीदा न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में, और आज सवेरे के इस अंक में मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट तन्वी खुराना। गुड मॉर्निंग तन्वी।
गुड मॉर्निंग दिव्या, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड ऑफ कोर्स द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, वी ब्रिंग यू आवर फॉरएवर एक्साइटिंग डेली न्यूज मैगजीन program. This is Aaj Savere, and we guarantee you that till 8 o'clock, that is in next half an hour, we have a lot in store for you, be it national news or international news, metro city updates, or even the historical information that is related to this particular day, which is 23rd of June. And today is 23rd of June. How is this particular day special? We'll let you know. And with that, just want to wish you a very happy Sunday. And today is going to be a wonderful day. Just eat, relax, and don't think of any worries that you have in your life. So with this, let's begin our program, shall we?
बिल्कुल तन्वी, हमें अब मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं।
The first session of the 18th Lok Sabha will begin tomorrow. During the session, the oath and affirmation of newly elected members will take place. Senior BJP MP Bharthahari Mehtab, who has been appointed as pro tem speaker, will administer the oath to the newly elected Lok Sabha MPs. The election of the new Lok Sabha speaker will be held on 26th of this month, while President Draupadi Murmu will address the joint sitting of the Lok Sabha and the Rajya Sabha on 27th of June. The session of the Rajya Sabha will commence on 27th of this month. The Parliament sessions will conclude on 3rd of next month. Union Home Minister Amit Shah will chair a high-level meeting to review the overall preparedness for flood management in the country. The meeting will take place in New Delhi today.
आज होने वाले नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित कदाचार के हाल के आरोपों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया का समग्र आकलन कराने का फैसला किया गया है। यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
The Ministry of Education has entrusted the matter of alleged irregularities in NEET UG examination 2024 to CBI for comprehensive investigation. In a statement, the ministry said government is committed to ensure the sanctity of examinations and protect the interest of students. It reiterated that any individual or organization found to be involved will face strictest action. Central government has also enacted the Public Examination Prevention of Unfair Means Act 2024 to prevent unfair means in the public examinations. National Testing Agency NTA had conducted NEET UG examination on 5th of last month.
और नीट परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
The Goods and Services Tax GST Council at its 53rd meeting in New Delhi decided to roll out pan-India biometric-based Aadhaar authentication to check fake invoicing. Speaking to the media yesterday, Finance Minister Nirmala Sitharaman said this will help the government combat fraudulent input tax credit claims made through fake invoices. Ms. Sitharaman said GST Council has recommended a uniform rate of 12% GST on all steel, iron and aluminium milk cans. The minister also announced that services provided by the Indian Railways to the common man will not attract any GST. The minister said that to help small taxpayers, the council has recommended extending the time limit to furnish details and returns in the form GSTR4 from 30th of April to 30th of June.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली में बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक में राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा।
The Bureau of Indian Standards, BIS, has introduced two new standards, IS-18590-2024 and IS-18606-2024, to enhance the safety of electric vehicles, EVs. These new BIS standards are designed to ensure that the critical component of EVs meets stringent safety requirements. The newly introduced standards are for electric vehicles in the L, M and N categories. This initiative is a significant step towards enforcing the reliability and safety of electrical powertrains and batteries. With these new additions, BIS now boasts a total of 30 Indian standards dedicated to electric vehicles and their accessories, including charging systems. This comprehensive set of standards is crucial in driving India's transition to a more sustainable, environmentally friendly and efficient transportation system.
आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट में कल रात एंटीगा में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की टीम 8 विकेट गंवाकर 146 रन पर सिमट गई। तेजी से 50 रन का स्कोर करने वाले हार्दिक पंड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के निकट पहुंच गया है और बांग्लादेश इस दौड़ से बाहर हो गया है।
And if we talk about table tennis, India's Srija Akula has reached the finals in both women's singles and women's doubles at the World Table Tennis WTT Contender in Lagos, Nigeria last evening. Srija also made history by becoming the first Indian to advance to a WTT Contender final in singles category. In the first singles semi-final, Srija defeated compatriot Sutirtha Mukherjee 3-2 to secure her place in the final.
और आज सवेरे में आप प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरें।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।
So now let's talk about the metro city updates. Shall we begin with Chennai, Hyderabad and Bangalore?
Bilkul Tanvi.
Let's talk about Chennai. Lieutenant General Michael A.J. Fernandez took over as commandant of the Officers Training Academy at Chennai. Fernandez was the Director General Staff Duties at the Integrated Headquarters of the Defence Ministry. He took over charge from Lieutenant General Sanjeev Chauhan, who has been posted to New Delhi. Fernandez was a brigade major in an operational brigade in high altitude area, engineer staff officer in the United Nations Peacekeeping Force in Lebanon and a Colonel General Staff of the Infantry Division and also a Brigadier Level Staff Officer in the Military Operations Directorate at Army Headquarters. His command assignments included command of an Engineer Regiment in High Altitude, command of an Amphibious Infantry Brigade and command of an Infantry Division in the Desert Sector. If we talk about Bangalore, the University of Agricultural Sciences, Bangalore had organized Product Samthe or Agri-Produce Market at its campus yesterday. Several self-help groups exhibited their products during the event organized to create awareness about the Agricultural University to farmers and the general public. Agri-produce like seeds, aromatic and medicinal plants, biopesticides, biofertilizers, agricultural implements, vermicompost, silkworm cocoons and banana plants were on display and sale. For public food items like organic jaggery, honey, rajmuri rice, organic ragi, jackfruit and its products were sold during the sampay. The products on sale including coconut oil, handmade scented soaps and face creams, value-added products made of millets, nutritional laddu, bakery products, ready-to-cook powders and mixtures and pickles and much more. The University of Agricultural Sciences has developed 485 technologies and 328 varieties in its long span of 6 decades. It had supplied 400 quintals of sunflower seeds for export to African countries, especially Uganda, through the East African Seed Company Limited. Now let's go to Hyderabad. The UPSC rank holders of 2024 have facilitated opening of Sukanya Samriddhi Yojana accounts for underprivileged. In a move to support and empower unprivileged girls, the Indian Postal Department organized Sfurthi, a program in which 100 Sukanya Samriddhi accounts were opened. In addition, India Post Payment Bank digital accounts were also opened for mothers and guardians of the girls. The event was organized in Jamae Usmania Post Office under the supervision of Postmaster General T.M. Srilatha, and several senior officials attended. So these were the updates from 3 metro cities, Chennai, Bangalore and Hyderabad. Now let's go to our my co-anchor and ask her, Divya, what are the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata?
तनवीर, दिल्ली में पानी की कमी को लेकर जल मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार से पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन पानी सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। इसके बाद वो धरना स्थल जंगपुरा स्थित भोगल पहुंची और वहां पानी सत्याग्रह की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली के आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन सहित पार्टी के विधायक और पार्षद मौजूद रहे। वहीं दिल्ली से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जल मंत्री आतिशी का सत्याग्रह एक छलावा है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड ने इस वर्ष मार्च में समर एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के पानी सत्याग्रह को भाजपा ने सत्याग्रह की मूल भावना को ठेस पहुंचाने वाला बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि मंत्री आतिशी का सत्याग्रह महज एक दिखावा है। वो केवल 4 घंटे अनशन स्थल पर बैठ रही हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री आतिशी वो ही प्रशासनिक अराजकता दिखा रही हैं जो जनवरी 2014 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजपथ पर धरने पर बैठकर दिखाई थी। श्री सचदेवा ने कहा कि यदि जल मंत्री आतिशी को लगता है कि शहर में पानी की कमी है और हरियाणा सरकार अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं करवा रही है तो वे पंजाब सरकार से पानी ले सकती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है और वो मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात कर सकती हैं। दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद के यात्रियों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम RRTS कॉरिडोर का दूसरा डिपो मोदीपुरम में तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा यहां एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़भाड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे सोमवार से अम्बाला और सहरसा के बीच ग्रीष्मकालीन स्पेशल रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी अम्बाला कैंट से शाम के 7:45 पर सहरसा के लिए प्रस्थान करेगी जो बुधवार को सुबह 4:15 पर पहुंचेगी। रास्ते में ये रेलगाड़ी सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, रक्सौल, दरभंगा, समस्तीपुर और खगड़िया जंक्शन पर रूकेगी। ये रेलगाड़ी सिर्फ एक ही फेरा लगाएगी और इसमें शयनयान और सामान्य डिब्बे होंगे। वहीं मुंबई में ठाणे नगर निगम ने शहर की पहली बाढ़ जोखिम प्रबंधन योजना जारी की, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि ये विकास योजनाओं को लागू करते समय आपदा प्रबंधन प्रणालियों को मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेगी। व्यापक ठाणे सिटी एक्शन प्लान 2024 को महाराष्ट्र सरकार और ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद CEEW के सहयोग से विकसित किया गया है जो एशिया की अग्रणी गैर लाभकारी शोध संस्थाओं में से एक है। जो संसाधनों के उपयोग, पुनः उपयोग और दुरुपयोग को समझाने के लिए डेटा एकीकृत विश्लेषण और रणनीतिक आउटरीच का उपयोग करती है। पश्चिम बंगाल सरकार सिलिकोसिस बीमारी से निपटने के लिए राज्यव्यापी अभियान चला रही है। सिलिकोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। फिलहाल चुनिंदा स्थानों पर ही जागरूकता अभियान चलाया गया है। जो लोग खदान उत्खनन क्षेत्र और पत्थर उत्खनन क्षेत्रों में काम करते हैं वे सिलिकोसिस रोग से प्रभावित होते हैं। फिलहाल पुरुलिया, बीरभूम, रामपुरहाट, आसनसोल, पश्चिम बर्धमान, झाड़ग्राम में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार से फंड आने के बाद आशा कार्यकर्ताओं को इस काम में लगाया जाएगा। राज्य का श्रम विभाग सिलिकोसिस प्रभावित व्यक्तियों और मृत व्यक्तियों के परिजनों को एक माह के भीतर पेंशन वितरित करेगा। परिवहन विभाग सिलिकोसिस प्रभावित लोगों के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करेगा।
So these were the Metro Cities updates. And now let's talk about the weather update. Chennai is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature is 28 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Bengaluru is expected to have partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature is 21 degrees and the maximum will be around 26 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a मैक्सिमम ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस।
और दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और कोलकाता में आसमान में बादल छाए रहने के साथ बारिश की छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और तन्वी, आज 23 जून है जो कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक के लिए आज का दिन बहुत खास है।
Absolutely. It was established in 1948 and this day is a global celebration of sport and physical activity held annually on this particular day, that is June 23rd. And every year there is a particular theme. This year's Olympic Day theme is Let's Move and Celebrate. Aims to ignite a collective passion for the Olympic Games Paris 2024 by encouraging people to get active and feel connected through sport.
और इसके अलावा तन्वी, आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष 23 जून को यह दिवस मनाया जाता है। ये दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को 277 प्रस्ताव पारित करके इसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। और इस दिन दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से इसे मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। साथ ही इस दिन संयुक्त राष्ट्र जनसेवा पुरस्कार दिया जाता है और संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित करता है। और आइए अब जानते हैं आज के दिन के इतिहास के बारे में। तो 23 जून का इतिहास हम शुरू करते हैं। 930 में आइसलैंड में संसद की स्थापना हुई थी आज ही के दिन और ये दुनिया की सबसे पुरानी संसद है।
In the year 1661, Princess Catherine of Portugal wedded King of England Charles II. Portugal gave island of Mumbai to England as present and the British got Bombay as dowry from Portugal.
और 1757 में 23 जून को ही प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी।
In the year 1810, Duncan Dock of Bombay was completed.
और 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई थी।
In the year 1911, King George V was crowned as the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British dominions beyond the seas, Defender of the Faith, Emperor of India at Westminster Abbey in the ceremony evoking the continuity and tradition of the British monarchy magnificent spectacle. The imperial capital shifted from Calcutta to Delhi.
और 1980 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
In the year 1927, All India Radio's broadcasting service was started in 1927 by privately owned transmitter at Bombay and Calcutta. And if we talk about the year 1930, the Simon Commission recommended a federal India and the separation of Burma at London.
और 2014 में गुजरात का रानी की बाव और हिमाचल का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ और अब बात उन महान हस्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिन है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। वे एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। उन्हें आज भी एक प्रखर राष्ट्रवादी और कट्टर देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतों के पक्के इंसान थे। उनका जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रसिद्ध बंगाली परिवार में हुआ था और आज भारत के चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी की पुण्यतिथि है। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे 1967 से 1969 तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे। वर्ष 1916 में भारत लौटने के बाद वीवी गिरी श्रमिक और मजदूरों के चल रहे आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। हालांकि उनका राजनीतिक सफर आयरलैंड में पढ़ाई के दौरान ही शुरू हो गया था, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनकर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए सक्रिय हो गए।
टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वैलरी जून कार्टर कैश, an American country singer and a songwriter. A 5-time Grammy Award winner, she was a member of the Carter family and she played guitar, banjo, harmonica and auto harp and even acted in several films and television shows. June Carter Cash won 5 Grammy Awards and was inducted into the Christian Music Hall of Fame in 2009. So let's hear a soulful track by her titled Wildwood Flower.
With the roses so red and the lilies so fair, and the march was so bright with the emerald.
और आज भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय नेता श्री प्रकाश की पुण्यतिथि है। वे पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त थे, जिन्होंने 1947 से 1949 तक देश की सेवा की। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता है। देश सेवा और सच्ची निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। होम रूल लीग से श्री प्रकाश का सार्वजनिक जीवन आरंभ हुआ। 1918 से 45 तक वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। 1934-35 में वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1930 के नमक सत्याग्रह में, 1932 के करबंदी आंदोलन में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जेल की सजाएं भोगी।
And let's talk about Bobby Blue Bland, an American blues singer, and today is his death anniversary. Bland developed a sound that mixed gospel with the blues and the R&Bs. He was described as among the greatest storytellers of blues and soul music, who created tempestuous areas of love, betrayal and resignation, set against roiling dramatic orchestrations and left the listener drained but awed. His music was influenced by Nat King Cole. So let's hear an amazing track by him titled Ain't No Love in the Heart of the City.
Ain't no
आज भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बनर्जी का जन्मदिवस है। उनका जन्म 23 जून 1936 में पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उन्होंने 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों के फाइनल मैच में भारत की ओर से प्रथम गोल दागा था, जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और उन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 1990 में पद्मश्री प्रदान किया गया। 1990 में उन्हें फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया और 2005 में फीफा की ओर से उन्हें इंडियाज फुटबॉलर ऑफ द 20th सेंचुरी पुरस्कार दिया गया। वे ईस्ट बंगाल मोहन बगान और राष्ट्रीय टीम के कोच रही हैं।
सो टुडे वी आर रिमेम्बरिंग अ पर्सन हु इज एन इंडियन इंग्लिश पोएट, अ ड्रामेटिस्ट, एक्टर एंड म्यूजिशियन, एंड वी हैव सम वर्ड्स बाय अशोक कुमार हिमसेल्फ हु इज प्रेजिंग हिम एंड टेलिंग अस सम नॉट सो अननोन इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन। सो लेट्स जस्ट हियर इट आउट।
ऋषिकेश मुखर्जी की तस्वीर फिल्म आशीर्वाद में मैंने ये कहा था बच्चों के साथ, ये लिखा हुआ है हरिंदा चट्टोपाध्याय का। उसमें मैंने और कुछ जोड़े हैं, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। हरिंदा चट्टोपाध्याय जानते हैं आप, बहुत ही काबिल आदमी है, वेरी इंटेलिजेंट मैन और संगीतज्ञ भी हैं। मैं उन्हें गुरु समझता हूं और मैंने उसे इजाजत ली है कि मैं ये पेश करूं, तो मैं शुरू करता हूं। छन्न पकैया छन्न पकैया छन्न पकैया छन्न पे उड़ती साड़ी और फुलाए छाती चुक चुक करती चलती रेलगाड़ी। हा रेलगाड़ी 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 चुक 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 रेलगाड़ी।
एब्सोल्युटली वी आर टॉकिंग अबाउट हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ सरोजिनी नायडू एंड ही वॉज ऑल्सो a great person. The government of India awarded him the civilian honor of the Padma Bhushan in 1973, and he penned the first English song in any Hindi film that became an all-time hit, and the song was My Heart is Beating from the film Julie. And apart from this, he also acted in 1984 Mumbai Doordarshan TV serial ad that was Ados Pados, and the actor Amol Palekar was the protagonist in this serial. So he is the one who often recited his poem Rail Gari on All India Radio Akashwani as well. So we're talking about nobody else but Harindranath Chattopadhyay.
और भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट का जन्मदिन है। उनका जन्म 23 जून को वर्ष 1934 में उत्तराखंड में हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट ने सन 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो बाद में चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी, और बाद में चंडी प्रसाद भट्ट को इस कार्य के लिए सन 1982 में रेमन मैगेसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंडी प्रसाद भट्ट को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पद्म भूषण, 1983 में पद्मश्री और 1982 में रेमन मैगेसेसे पुरस्कार, 1991 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग द एक्टर रहमान टूडे ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, एन इंडियन एक्टर हुज करियर स्पैन फ्रॉम लेट 1940s थ्रू टू द लेट 1970s, एंड ही वॉज an integral part of the Guru Dutt team and most known for his roles in films such as Pyar Ki Jeet, Badi Behen, Pardes, Pyasa, Choti Behen, Sahib Bibi aur Gulam and even Waqt. So let's hear his powerful voice in his few dialogues.
Aiye chote babu aiye. Namaste. Bittu, jaan patal kar liye? Sab theek hai?
Ji haan sir.
Dekha nahi to lo dekho.
Ye mera card hai. सुबह सत्तर पे आ जाना।
मैं चौधरी वंश का मर्द हूँ छोटी बहू, गर्म खून है मेरी रगों में।
अम्मी जान देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। पीर साहब के मजार का सफर रहो।
ये क्या कहा तुमने?
अम्मा यार, यहाँ तो एक एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है।
भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी की आज जयंती है। राजेंद्र लाहिड़ी का जन्म बंगाल के पाबना जिले के भड़गा नामक ग्राम में हुआ था, और काकोरी कांड में लखनऊ की विशेष अदालत ने 6 अप्रैल 1927 को उन्हें फांसी देने का निर्णय किया था, और उसके बाद में गोंडा कारागार में उन्हें दो दिन पूर्व ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी। और आज बॉलीवुड फिल्म अभिनेता राज बब्बर का जन्मदिन है। वे हिंदी और पंजाबी फिल्मों में अपने बेहतर अभिनय के लिए जाने जाते हैं।
सो दिस वॉज आवर प्रोग्राम आज सवेरे। Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata, Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. And before leaving, let me just introduce you to the entire team. The editor was Sanyukta Yadav, the anchors were Tanvi Khurana and Divya Tomar, the center was Sumit Karmakar, and the production assistance has been given by V.P. Singh. With this, thank you for tuning in. Have a superb day. Namaskar.